नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत समुद्री बीमा पूल के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए 12,980 करोड़ रुपए का एक सॉवरेन गारंटी फंड बनाने का निर्णय लिया गया है।
इंश्योरर्स और री इंश्योरर्स वेस्ट एशिया में जाने वाले शिप्स को इंश्योर करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें शिप पे शिप ओनर है, उसके पीछे इंश्योरर और उसके पीछे री इंश्योरर और उसके पीछे सॉवरेन बैकस्टॉप। अगर इस तरीके से देखें तो ये व्यवस्था की गई है इस प्रोग्राम के तहत। करीब 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी का एक फंड क्रिएट किया जाएगा जो कि मैरीटाइम इंश्योरेंस के लिए रहेगा। जितनी भी तरह की मैरीटाइम रिस्क है, हल, मशीनरी, कार्गो, पीएनआई, वॉर, सबको इससे कवर करेंगे।
श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे संस्करण को मार्च 2025 के बाद मार्च 2028 तक जारी रखने को स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इसमें बस्तियों को ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ने वाले मुख्य मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क शामिल हैं। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 24,815 करोड़ रुपए की लागत वाली दो रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की घोषणा करने के लिए सरकार के फैसले की सराहना की है। श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी यह वृद्धि कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये संबोधन महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल करने में विफल रहने के बाद रहा। परिसीमन के माध्यम से महिला आरक्षण के कार्यान्वयन से संबंधित प्रस्तावित विधेयक लंबी बहस के बाद कल पारित नहीं हो सका। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की टिप्पणियों की निंदा की। नई दिल्ली में आज श्री प्रसाद ने कहा कि परिसीमन के बिना लोकसभा या विधानसभा में सीटों से संबंधित कोई संशोधन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जनगणना में काफी समय लग सकता है, इसलिए परिसीमन पिछली जनगणना के आधार पर किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पार्टियों ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक को रोके जाने की निंदा करते हुए आज एक रैली की। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि विपक्षी दलों ने राजनीतिक कारणों से विधेयक को पारित होने से रोका। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियां की। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पूर्वी मोदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में रैली की, जबकि दिलीप घोष ने खड़गपुर में जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा सहित पार्टी नेताओं ने उत्तरी बंगाल में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भय का माहौल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उत्तर 24 परगना जिले के कमरहाटी में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी ने मुर्शिदाबाद के फरक्का में एक रोड शो किया। ईरान ने अमेरिका की नाकाबंदी के जवाब में हॉर्मुज जलडमरू मध्य एक बार फिर से बंद करने की घोषणा की है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज कहा कि हॉर्मुज पर पहले की तरह उसका नियंत्रण है। ईरान ने चेतावनी दी है कि उसके बंदरगाहों पर नाकाबंदी जारी रहने तक हॉर्मुज से आवागमन अवरुद्ध रहेगा। दूसरी ओर अमरीकी केंद्रीय कमान सेटकॉम ने कहा कि अमरीकी सेना ने 23 जहाजों को वापस लौटने का आदेश दिया है। एक अन्य घटनाक्रम में ब्रिटेन की सेना ने बताया कि ईरान के रिवोल्यूशनरी कोर गार्ड ने हॉर्मुज से गुजर रहे एक टैंकर पर गोलाबारी की। जहाज और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 7 ओवर में 2 विकेट पर 84 रन बना लिए हैं। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं बेंगलोर में खेले गए एक अन्य मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। बेंगलुरु के दिए 176 रन के लक्ष्य को दिल्ली की टीम ने अंतिम ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।